ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का श्लोक है सातवें स्कंध का 13वां अध्याय का 25वां श्लोक। बोर्ड में लिखा हुआ है यद छाया लोकम इमाम प्रपीता कर्मभे ब्राह्मण स्वर्ग पवर्गयो द्वारम तिराश्चम पुनः अस्या यदचया लोकमिमाम प्रपिता कर्मभे ब्रह्मां स्वर्गापवर्गयोर्द्वारम् तिराश्चम पुनरस्य च यदचया लोकमिमाम प्रपिता कर्मभे ब्रह्मां स्वर्गापवर्गयोर्द्वारा तिराश्चम पुनरस्य च यदच्छाया लोकमिमाम् प्रपिता कर्मभे ब्रह्मां स्वर्गापवर्गयोर्द्वारा तिराश्चम पुनरस्य च माता जी शानदार इस श्लोक का बहुत लंबा तात्पर्य है, ढाई पेज का आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। अब ध्यान से सुनिएगा।
अदृक्षया भौतिक प्रकृति की तरंगों द्वारा ले जाया जाकर लोकम मनुष्य रूप इमाम यह प्रापिता प्राप्त किया हुआ कर्म भी विभिन्न सकाम कर्मों के प्रभाव द्वारा भ्रमण एक जीवन से दूसरे जीवन में घूमते हुए स्वर्ग स्वर्गलोक अपवर्गयो मुक्ति के द्वारम द्वार तक तिरश्चाम निम्न जोनियों तक पुनः फिर अस्य मनुष्यों के च तथा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती हैं, यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है जो हमें स्वर्ग लोकों तक मुक्ति तक निम्न जोनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकती है। दोहराएंगे, मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकते हैं। तात्पर्य, यह भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। विभिन्न जुनियों में जन्म तथा मृत्यु का यह संघर्ष विकास प्रक्रिया कहलाता है, किंतु पश्चात जगत में इसकी गलत विवेचना की गई है। पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता। लेकिन इस श्लोक में वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने स्वर्ग अपवर्ग या नीचे गिरने का तिरस्चाम पुनरस्य अवसर है। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वह ऊंच लोकों को जा सकता है, जहां इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना बढ़कर हैं, या फिर वह ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है जिससे वह विकास प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त करता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। भौतिक जीवन अपवर्ग कहलाता है क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की पांच विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। इन्हें प फ ब भ म अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प का अर्थ है परिश्रम, फ का फेन मुंह का झाग, यथा अधिक श्रम करने पर घोड़े के मुंह से निकला झाग, ब का व्यर्थता या निराशा, कठिन श्रम करने पर भी अंत में निराशा मिलती है, भ से भय, भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि से जलना, भौतिक जगत में मनुष्य भय की अग्नि से जलता रहता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, तथा मत्स्य मृत्यु, जीवन की इन पांच विभिन्न अवस्थाओं को निरस्त करने पर ही अपवर्ग या भौतिक जगत के दंड से मुक्ति मिल सकती है। तिरस्चाम शब्द पतित जीवन का सूचक है। निसंदेह मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दशाओं का अवसर प्रदान करता है। पश्चिम के लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वह अधिक सुखपूर्वक रह रहा है, किंतु यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग के लिए नहीं करता तो वह पुनः कुकरों शुकरों के निम्न जीवन में जा पड़ता है। अतः विज्ञ मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह ऊंच लोकों को जाना चाहेगा, अपने को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से विकास प्रक्रम द्वारा ऊंच तथा निम्न जोनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य करता है तो वह ऊंच लोकों को जा सकता है या मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह कुत्ते या शुकर की निम्न जोनियों में गिर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 18:9 अध्याय श्लोक 25 में बताया गया है, यान्ति देव व्रता देवान, जो लोग ऊंच लोकों में देवलोक या स्वर्ग लोक को जाने की इच्छुक हैं उन्हें वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मुक्ति चाहते हैं और भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं उन्हें वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट वरदान है, क्योंकि यह आंदोलन लोगों को भगवत धाम जाने की शिक्षा देता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 22 में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन के विभिन्न भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के संयोग से प्राप्त होता है, कारणम गुण संगोश्च सदसद योनि जन्मसु। सतो रजो तथा तमो गुणों की संगति के अनुसार ही मनुष्य को अपने अगले जन्म में उपयुक्त शरीर मिलता है। आधुनिक सभ्यता यह नहीं जानती कि जीव शाश्वत होते हुए भी प्रकृति की विभिन्न संगति के अनुसार विभिन्न रुग्ण परिस्थितियों में रखा जाता है, जिन्हें अनेक जोनियां कहते हैं। आधुनिक सभ्यता प्रकृति के नियमों से अनजान है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुद्धात्मा कर्तारः इति मन्यते। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर मोहग्रस्त आत्मा अपने को उन सारे कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भगवद्गीता अध्याय 3 श्लोक 27 में हर जीवात्मा प्रकृति के कठोर नियमों के पूर्ण नियंत्रण में है, किंतु मूर्ख लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे स्वतंत्र नहीं हो सकते, यह मूर्खता है। मूर्खतापूर्ण सभ्यता अतीव घातक है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह अवगत कराने का प्रयास कर रहा है कि प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत पूर्णतया परतंत्र है, और यह उन्हें श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति प्रबल माया द्वारा सताए जाने से बचाने का प्रयास कर रहा है। इस भौतिक नियमों के पीछे परम नियंता कृष्ण है। माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। अतः यदि कोई कृष्ण की शरण में जाता है, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, तो वह तुरंत ही बाह्य प्रकृति के नियंत्रण से छूट सकता है। सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूया कल्पते, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
हरे कृष्ण। ध्यान से सुना आपने, बहुत लंबा तात्पर्य था। ओम ज्ञान सिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाय चक्षुर्विमुखम् श्रीचैतन्य मनोवैष्णवम् सर्वमेव भूतले स्वयं रूपकनामयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण हरे यत छाया लोकमिमं प्रभिता कमभे ब्रह्मन् स्वर्गपवर गयो द्वारम् तिराश्चाम पुनः अस्यचा। तो इस अध्याय में आप आदर्श पुरुष का क्या आचरण होना चाहिए वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, और पिछले अध्यायों में नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रहलाद महाराज के विषय में आपने बड़े गहराई के साथ इस साधन स्कंद में ज्ञान प्राप्त किया है। आपने पढ़ा कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने माता के घर में जब थे जब दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो प्रहलाद महाराज राजा थे, पूरे ब्रह्मांड का पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे अपने साथियों के साथ, और जब वो भ्रमण कर रहे थे तो वो पहुंचे कावेरी नदी के पास। वहां एक पहाड़ था, वहां उन्होंने देखा एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति अजगर, पाइथन, अजगर बोलते हैं ना, एक पाइथन अजगर जैसे या पाई अजगर बैठा था, ये था मनुष्य, अजगर जैसे बैठा था। अजगर जो है एक स्थान में टिका रहता है बहुत समय के लिए, आप तो एक स्थान में ज्यादा देर नहीं टिक सकते। अभी आप क्लास में बैठे हो, अगर 40 मिनट या एक घंटे से ज्यादा हो जाए तो आप सब सोचोगे कब जल्दी समाप्त हो, अब हिलना चाहते हो। तो ये जो अजगर है ये हिलता नहीं है, एक ही स्थान में जुड़े रहता है। तो प्रहलाद महाराज कबई नदी के तट पर जब पहुंचे, वहां एक पहाड़ था जहां की उन्होंने इस अजगर व्यक्ति का दर्शन प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज देखते ही पहचान गए ये व्यक्ति आत्मज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं। उस अजगर व्यक्ति का पूरा ध्येय धूल से भरा हुआ था। एक रूप से आप कहोगे गंदा है धूल से, कभी आप जू बीच में देखते हो लोग मिट्टी से अपने शरीर को ढक देते हैं। तो ये अजगर व्यक्ति के पूरे शरीर में धूल थी, पर धूल और गंध होने के, और वो जरा मोटा भी था, तो धूल थी। पर प्रहलाद महाराज पहचान गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें प्रणाम किया, अपने माथे को उनके चरणों में लगाया, जोड़ा और प्रणाम करके प्रहलाद महाराज ने पूछा, आप सिद्ध पुरुष मुझे नजर आते हो, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। उस अजगर व्यक्ति ने उत्तर में कहा, मैं जा, आप राजा हो, आपके पास तो पूरा ज्ञान है। प्रहलाद महाराज कोई साधारण पुरुष थोड़ी थे, महाजन माने जाते हैं, संयम निरादर शंभु कौमार कपिल मनु प्रदो जन को भीष्मो मुनीर भाई ऐसा के मैं बारह महाजन में एक महाजन कौन है, प्रहलाद महाराज। उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था नारद मुनि जी के द्वारा जब वो माता के गर्भ में थे। तो ये अजगर व्यक्ति वो भी पहचान गया ये प्रहलाद महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं है। प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया और पूछा, ये बताइए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। उस अजगर व्यक्ति ने कहा कि आपके पास पूरा ज्ञान है, जब भी आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हो, आप भागवतम में देखोगे कि प्रश्न और उत्तर है हर से। पीतु महाराज ने जब कुमार का स्वागत किया तो पीतु महाराज ने उनको प्रणाम किया, ताकि वो शक्तवेश अवतार माने जाते हैं। और पीतु महाराज ने उनसे पूछा, ये बताइए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से मिले तो उन्होंने भी पूछा, उन्होंने कहा, शिक्षा दीजिए कि हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप किसी संत को मिलो तो भागवतम के अनुसार चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान हो, हमें प्रश्न पूछना चाहिए किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद जी भी प्रवचन के बाद पूछते थे, एनी क्वेश्चंस, प्रभुपाद जी कहते थे, प्रश्न पूछना बुद्धि की निशानी है। अच्छी बुद्धि, तो आप भगवतम में देखते हो भगवान के भक्त, हालांकि उनके पास पूरा ज्ञान है, प्रहलाद महाराज के पास पूरा ज्ञान था, जब भी जब वो इस अजगर व्यक्ति को मिले उन्होंने क्या कहा, वो पूछा उनसे, दिव्य ज्ञान मुझे दीजिए। तो इन श्लोकों का उच्चारण ये अजगर व्यक्ति कर रहा है और इस श्लोक में अजगर व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान, तो हम सब अनेक योनियों में गुजरते आ रहे हैं। ये नहीं कि हर जन्म मनुष्य योनि में होता है, ये नहीं कि अगला जन्म में मनुष्य योनि में होगा। तो ये उजगर व्यक्ति कह रहा है मैं विकास प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रकार के जन्म प्राप्त कर रहा हूं और साकाम कर्मों के कारण, क्योंकि मैंने इंद्रिया तृप्ति के कार्य में जुड़ा हुआ था। जब तक आप इंद्रिया तृप्ति के कार्य में जुड़ोगे आपको भौतिक भेद प्राप्त होते जाएगा। इसलिए पांचवें स्कंद में ऋषभदेव भगवान कहते हैं नूनम ब्रह्मता कुरुते विकर्मा। जो व्यक्ति विकर्म कार्य करता है, विकर्म कार्य करता है कार्य जो कि शास्त्र के विपरीत हो। जो व्यक्ति विकर्म कार्य करता है वो मूर्ख व्यक्ति है। तो आप कहोगे मूर्ख क्यों है, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहा कि आज जो ध्येय उसने प्राप्त किया है वो उसे केवल कष्ट ही दे रहा है और साकाम कार्य कर्म करने के द्वारा आपको फिर से ध्येय प्राप्त होगा। तो क्या देगा आपको, केवल कष्ट ही देगा। तो ये अजगर व्यक्ति कह रहा है कि विकास प्रक्रियाओं के कारण मुझे ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं साकाम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ा हुआ था, पर विकास क्रिया के कारण मुझे भी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हम सब जल की योनियों में गुजर चुके हैं, जल में 9 लाख योनियां हैं, उसके पश्चात स्थावर योनियों में गुजर चुके हैं। स्थावर योनियों से कहते हैं जैसे पेड़ हुआ, पत्ता हुआ, सब्जी हुई, फल हुआ, उसके पश्चात पक्षी की योनियों में हम गुजर चुके हैं, पशुओं की योनियों में गुजर चुके हैं। और इन सब योनियों में गुजरने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने का ये अर्थ नहीं कि आप आगे बढ़ते जाओगे अगर आप साकाम कार्य करोगे। तो उजगर व्यक्ति क्या कह रहा है, आप मुझे ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं इंद्रिया तृप्ति के कार्यों में जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे ये मनुष्य जन्म आज प्राप्त हुआ है अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात। तो ये जो मनुष्य योनि है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा इस श्लोक के अनुसार हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा आप स्वर्ग लोक में पहुंच सको। स्वर्ग लोक में भौतिक संसार इस जगत के तुलना में हजारों गुना ज्यादा भौतिक सुख है। जैसे कि आप बॉम्बे शहर में भी कई इलाकों में देखते हो रईसों की कोठी है, वहां ज्यादा सुख है, कईयों को देखते हो झोपड़पट्टी में। तो इसी प्रकार अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, स्वर्ग लोक में यहां की तुलना में लाखों गुना ज्यादा सुविधा है। तो ये अजगर व्यक्ति कह रहा है मनुष्य देह के द्वारा अब ऐसा कार्य कर सकते हो जिसके द्वारा आप स्वर्ग लोक में पहुंचो या मुक्ति प्राप्त कर लो। یا نیچے کی یونیوں میں, یا ایسا کرے کرو کہ کم سے کم آپ کو منشیہ دھیے پراپت ہو. یہ سب نربھر رہے گا ہمارے کرموں کے آدھار پر. بھاگوتم کے تیسرے سکند میں آپ بھگوان کپیلا دیو کی کتھا پڑھتے ہو. کپیلا دیو بھگوان نے ماتا دیواہوتی کو دیویہ گیان پردان کیا تھا, تو ماتا نے پوچھا بیٹے سے, ماتا کو پتا تھا کہ میرا بیٹا بھگوان کا اوتار ہے, تو ماتا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے کرموں کا ساکشی کون بنتا ہے, کیونکہ جب آپ بھوتک وادیوں کو کہتے ہو کہ آتما سناتن ہے, شریر نشور ہے, آتما کا دیہانتر ہو رہا ہے, تو کئی بار بھوتک وادی کیا پرشن پوچھتے ہیں, واٹ ڈو دے آسک, واٹس دا پروف, یس یور سائنٹسٹ ڈاکٹر مائی مکل مالا, واٹ از دا پروف, کیا ہے ماتا نے پوچھا کیسے نرنے کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس پرکار کا دھیے پراپت ہوگا. بیٹے نے کہا کرمنا دیو نیتنا جانتو دیو پپدے, ہم سب کے کرموں کے انیک ساکشی ہیں, سوریہ کے دیوتا, چندرما اور پرماتما, تو کرموں کے انوسار ہمارا بھوشیہ نرنے کیا جاتا ہے. تو اجگر ویکتی کہہ رہا ہے یہ جو منشیہ دھیے آپ نے پراپت کیا ہے, اگر آپ اس کا ٹھیک اپیوگ کرو گے تو بھگوان کے دھام لوٹ سکتے ہو. اگر آپ بھوتک اچھاؤں کو رکھو گے تو آپ سورک لوگ تک بھی پہنچ سکتے ہو, یا اچھے کام کرو گے تو منشیہ دھیے بھی پراپت ہو سکتا ہے. اگر کیول ویکر میں کاریہ کرو گے تو نیچے کی یونیوں میں بھی جا سکتے. تو اس شلوک کے تاتپریہ میں پراپا جی ڈارون کی چرچا کرتے ہیں, ڈارون کا سدھانت. تو ڈارون نے کہا ہے کہ یہ وکاس ہو کر ہم بندر کی یونی میں تھے, اب منشی یونی میں آ گئے ہیں. پر ڈارون یہ بات نہیں سویکار کرتا جس کا ورنن پراپا جی کر رہے ہیں کہ منشی یونی میں پراپت کر کے واپس نیچے بھی گر سکتے ہو. یہ نہیں کہ آج منشیہ دیہ پراپت کیا تو بنا شنکا کے ہر دیو آگے بڑھو گے. کئی بار آپ دیکھتے ہو اخباروں میں جب دیہان کی سوچنا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہی لیفٹ فور ہز ہیونلی ابوڈ, نگری کا دیہان تو بہت سورگ میں پہنچ گیا. آپ سورگ میں کیول جب جاؤ گے جب آپ نے پونیہ کاریہ کیا ہوگا. اگر آپ نے شاستر کے وپریت کاریہ کیا ہے تو آپ نیچے کی یونیوں میں جنم پراپت کرو گے. تو یہ جو پراپا جی کہہ رہے ہیں, ڈارون یہ کہہ رہا ہے کہ بندر سے تم منشیہ بن گئے, تو ڈارون یہ سویکار نہیں کرتا کہ منشیہ سے واپس بندر بن سکتے ہو. تو پراپا جی کہہ رہے ہیں منشیہ دیہ پراپت کر کے واپس تم بندر بھی بن سکتے ہو, کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ پڑھائی کر رہے ہو کالج میں, آپ فیل ہو جاتے ہو, پھر فیل ہو جاتے ہو, ٹیچر کیا کہتا ہے پیچھے کی کلاس میں جاؤ. تو اگر آپ ٹھیک کاریہ نہیں کرو گے تو منشیہ ہونے سے نیچے کی یونی میں بھی جا سکتے ہو. تو پراپا جی تاتپریہ میں اس وشے کی چرچا کر رہے ہیں. آگے جا کر پراپا جی دو شبدوں کا اپیوگ کر رہے ہیں, پرورگا اور اپورگا. پرورگا شبد کا ارتھ ہے وہ ویکتی جو کہ بھوتک کاریوں میں جڑا رہتا ہے, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भौतिक जीवन है उसमें पांच प्रकार के कष्ट है जिनसे कोई नहीं बच सकता। ये पूर्वग्रह शब्द के विषय में कहा गया है पा, पा का अर्थ है परिश्रम। हम भौतिक संसार में अत्यंत परिश्रम संघर्ष करते हैं। आज के वातावरण में कई बार अमेरिका में भी लोगों को कहो कि आध्यात्मिकता में रुचि लो, वो कहते हैं हमें तीन तीन नौकरी करनी पड़ती है, समय नहीं है। क्यों? महंगाई का जमाना है। तो भौतिक संसार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम। और जब आप अधिक परिश्रम करते हो तो क्या निकलता है? फोम। फोम को क्या कहते हैं? झाल। प्रभा जी घोड़े का उदाहरण देते हैं, घोड़ा दौड़ता है तो झाल निकलती है। तो हम बहुत परिश्रम करते हैं। आप सोचते हो कि सिर्फ गरीबों को परिश्रम करना पड़ता है, अमीरों को भी परिश्रम करना पड़ता है अपने धन को बचाने के लिए। गरीबों को परिश्रम करना पड़ता है धन कमाने के लिए, धनियों को परिश्रम करना पड़ता है धन बचाने के लिए। तो आप मौलिक संसार में अधिक परिश्रम करते हो पा, फिर उसके कारण पा ये झाल निकलती है। उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात प्रभु जी कहते हैं बा व्यर्था। चाहे आप कितना भी परिश्रम करो अंत में निराशा रहती है। आप किसी विषय किसी कोने में चले जाओ, आपको आज के वातावरण में केवल निराश व्यक्ति दिखेंगे। संतुष्ट केवल वो है जो भगवान का भक्त है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक समय बड़े धनी राजा के शासन का के राज्य का शासन कर रहे थे। रूप गोस्वामी के पास इतना धन था कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। उन्होंने अपने धन को बांटा, 50% ब्राह्मणों को, 25% रिश्तेदारों को, 25% रखा तो भविष्य में काम में आया सनातन गोस्वामी को मुक्त करने में। तो जो वृंदावन गए तो मधुकरी करके रह रहे थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं था उनके पास। और रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी खानदान के पुत्र थे, जो वृंदावन गए मधुकरी करके रह रहे थे, थोड़ी सी लस्सी पीते थे और संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि हरि नाम था उनके साथ। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जब गांधी जी स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे तो एक बहुत बड़ा वकील था, तो गांधी जी को बकायदा चंदा देता था। तो गांधी ने कहा एक दिन, तो तुमने पैसा बहुत दे दिया, अभी तुम आओ मेरी सेवा करने में। तो धनी वकील था, उसके लिए साधारण वातावरण में रहना बड़ा कठिन था। एक महीने में उसका देहांत हो गया। तो प्रभु जी कह रहे थे अगर आपने भगवान की शरण ली है, हरि नाम लिया है, तो हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। तो लोग अधिक परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम कि मुंह से झाल निकलती है, झाल निकलने के कारण भी अंत में क्या? निराशा होती है। इसके पश्चात क्या? बड़ा भय। सबके मन में भय है, भय है कि कल क्या होगा। एक भजन है गोविंद दास कविराज का, बाजा हुए मनसि नंदन नंदना अभय चरण रविंद्र है। हे मेरा मन तुम भय से भरे हुए हो, और अगर तुम भय से रहित होना चाहते हो तो एक ही उपाय है, महानंद के पुत्र के शरणगत हो जाओ। तो हम सब भय के वातावरण में रह रहे हैं। मान लो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनको भी भय है। इसलिए जब भय उनकी गाड़ी जाती है तो चारों तरफ सड़कों को बंद कर देते हैं, है कि नहीं? तो अनेक प्रकार के भय है। एक व्यापारी को भय रहता है दूसरा व्यापारी भी आज धंधा नहीं छीन ले, है ना? एक व्यक्ति को भय रहता है चोर नहीं आ जाए। तो अनेक प्रकार के भय से हमारा मन भरा हुआ है। ये भय है कल क्या होगा, जैसे उम्र में बढ़ते हो भय रहता है कल कौन सी बीमारी आएगी। तो भय, और भय के पश्चात क्या, मां मृत्यु। मृत्यु से कोई बच सकता है? कहते हैं अमेरिका लोग भौतिक समाज में एक धंधा है जो कभी घाटे में नहीं जाता, शमशान घाट का धंधा, क्योंकि सबने मरना है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक संसार में रहोगे तो पांच प्रकार के कष्टों से आपको अवश्य ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए आगे जाकर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त है इसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए भक्ति भावना में जुड़ने के लिए। आज लोग अज्ञानता में हैं, अज्ञानता के कारण सोचते हैं कि भौतिक कार्यों के द्वारा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो चाहे आप कितना भी धन कमा लो, चाहे आप की कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, भौतिक समाज में क्या है, निराशा ही निराशा। आजकल आप देखते हो कि स्कूलों में कॉलेजेस में छोटी उम्र से ही ये विद्यार्थी भंग ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। क्यों ले रहे हैं? सोचते हैं इससे हमारी निराशा दूर होगी, पर वास्तविकता में निराशा बढ़ते जाती है। तो इसलिए शास्त्रों का कहना क्या है, अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसकी कदर करो। जैसे कि भौतिक समाज में अगर कोई कीमती वस्तु हो तो उसको आप सावधानी से रखते हो या नहीं? आपके घर में अगर सोना हो ध्यान से रखते हो? अखबार की अपरवानी करते कहां भी फेंक देते हो? क्यों? उसी प्रकार यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, क्या कह रहे हैं, हमारा कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन है ये पूरे संसार का उद्धार करने में जुड़ा हुआ है, और हम सबको प्रयास करना चाहिए क्या, भगवान के धाम लौटने के लिए। भगवान के धाम का नाम क्या है? वृंदावन, वैकुंठ। वो ये भौतिक जगत का क्या नाम है? कुंथ। कुंथ का अर्थ है जहां की कष्ट कष्ट। आप भौतिक समाज में आप सोचते हो अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसे भारत में लोग सोचते हैं हम इंग्लैंड की एक यात्रा कराए तो सुखी हो जाएंगे। तो इंग्लैंड में लोग क्या सोचते हैं, हम भारत की यात्रा कराए तो सुखी होंगे। हर व्यक्ति सोचता है अगर किसी प्रकार से मैं अपनी स्थिति को बदल लूं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, घास ज्यादा हरा दिखता है, और घास हरा किधर भी नहीं है, चाहे अब इधर हो। जैसे शास्त्रों का कहना है भौतिक समाज में क्या है, कष्ट कष्ट है। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार की आवश्यकता है, और प्रभुपाद जी ने यादि देव भ्राता देवन, प्रभुपाद जी ने गीता के उस श्लोक का उपयोग भी किया है जिसमें भगवान कहते हैं कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर आप देवताओं के पास जा सकते हो या नीचे की होनियों में। तो दूसरे शब्दों में कृष्णा भक्ति की कृष्णा भक्ति की आवश्यकता है और कृष्णा भक्ति का प्रचार सबसे महत्वपूर्ण है। जो वैष्णव हैं वो पराव दुखा दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी देकर ये भाव रहता है कैसे उनको उद्धार किया जाए। जैसे प्रहलाद महाराज एक संत को मिले। प्रहलाद महाराज के पास तो पूरा ज्ञान था, वो बचपन से ही आत्मज्ञानी थे, पर जब भी उन्होंने एक संत अजगर से प्रश्न पूछे, शिक्षा दीजिए कैसे हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अगर प्रश्न पूछें तो इस प्रकार का प्रश्न हमें पूछना चाहिए। ये नहीं आजकल समाज में हम पूछते कैसे हो, दूसरा उत्तर दूसरा व्यक्ति क्या उत्तर देता है, ठीक है कोई भी ठीक नहीं है। हम हंसते हैं पर ये जैसे कहते हैं नकली हंसी है। तो हमें कृष्ण भगवान के शरणागत होना, भगवान के शरणागत होने का अर्थ क्या है, भगवान के शिक्षा का पालन करना, और ये शरणागत का ज्ञान प्राप्त होता है साधु संगत के द्वारा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र का राम मात्र साधु संग सर्वसे दिया। एक पल के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्ति की संगत मिले तो आपका जीवन सुधर सकता है। जैसे ये साल हम इस्कॉन की सुवर्ण जयंती मना रहे हैं, आज प्रभुपाद जी के प्रयास से और परिश्रम से विश्व के कोने कोने में केंद्र है। इन केंद्रों का भाव क्या है, सब जगह एक ही भाव, लोगों को सुखी बनाया जाए। लोग सुखी कैसे बन सकते हैं, इस दिव्य ज्ञान को अनुकूल करने के माध्यम से। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, कौन है सबसे प्रिय, उसे ज्यादा प्रेरणा का हुआ है ना। तो हम सब में ये भाव होना चाहिए कि हम दुखी लोगों को सुखी बनाएं। हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, कंजूस मतलब कि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है हम दूसरों को नहीं देंगे, दूसरों को नरक में जाना हमें क्या पड़ा। दो प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठ नंदी भजन नंदी। जो भजन नंदी भक्त हैं वो केवल अपने स्वार्थ का ही सोचते, भजन करते हैं पर अपने स्वार्थ का। गोष्ठ नंदी भक्त जो हैं वो अपने सुधार का और दूसरों का। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखते हो 70 साल की आयु में 40 रुपए के साथ भारत से निकले गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए। गुरु महाराज का आदेश क्या था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। महाप्रभु का संदेश बड़ा सरल है, हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है। आज विश्व के कोने कोने में हरि नाम का उच्चारण हो रहा है। जैसे मैं भक्तों को कल रात को कह रहा था, ये सब जन्माष्टमी उत्सव के पश्चात टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल आया था जिसमें उन्होंने लिखा कि चीन लोग कृष्णा के प्रेमी बन गए हैं, हरे कृष्णा का मंत्र कर रहे हैं, ये सब इस्कॉन की दया से। तो ये हरि नाम जो है पूरे मानव समाज के लिए है। तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो मैं जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य क्या है, लोगों को ये ज्ञान देना, जिसके द्वारा वो भगवान के धाम लौट सके। हम ये नहीं चाहते लोग वापस मनुष्य जीवन प्राप्त करके नीचे गिरे, जैसे पहाड़ की चोटी में चढ़ रहे हो, एक गलत कदम उठाओगे तो नीचे गिर सकते हो। तो हम ये नहीं चाहते कि लोग वापस पशु बने। पर लोगों की ऐसी भावना है कि जब आप लोगों को कहते हो इन कार्यों का ये परिणाम होगा, वो कहते हैं ठीक है हम पशु बन जाएंगे। जब लोगों को आप जबान के चस्के के लिए जिन पशुओं को खा रहे हो वो बदला लेंगे, तो क्या कहते हैं ठीक है खाने दो, या विश्वास ही नहीं करते। ये विश्वास नहीं करते आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। क्या कहते हैं, क्या कारण है कि अनेक लोग ये कहते हैं, अनेक भौतिकवादी कहते हैं आत्मा है ही नहीं, क्या कारण है? क्योंकि अगर वो ये स्वीकार करेंगे कि आत्मा है, आत्मा सनातन है, तो उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें पापों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, तो बड़ा आसान मार्ग, आत्मा है ही नहीं, ये तो साधुओं का प्रॉपर करना है। कहाँ है, क्या है प्रमाण? आत्मा का प्रमाण है कुछ? चेतना। जब तक आत्मा है चेतना है। एक बहुत बड़े विज्ञानी ने कई साल पहले कईयों को मरते हुए देखा और कहा कि जरूर शरीर में कोई ऐसी चीज है जिसके जाने पर हम कहते हैं मृत्यु हो गई। और प्रभुपाद जी ने इस व्यक्ति को लिखा कि बड़ी खुशी की बात है कि आप ये स्वीकार कर रहे हो। पर ये विज्ञानी का भाव था, हम खोजेंगे कि देह में क्या है जिसके त्यागने से मृत्यु हो जाती है। तो प्रभुपाद जी ने अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित किया कि इसे आप कभी नहीं देख सकोगे। आत्मा को कोई देख सकता है? नहीं। और अंत में इस विज्ञानी ने स्वीकार किया कि जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो हमारे शास्त्रों में ये भाव दूसरे शास्त्रों में भी है। उदाहरण के लिए बाइबल में कहा गया है, What shall thou do if thou gain the whole world but suffer the loss of your eternal soul? तुम सारे विश्व के धन को प्राप्त कर लोगे पर आत्मा को खो दिया तो तुमने क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। तो भक्त ये नहीं चाहते कि लोग पशु बने। हम ये भी नहीं चाहते कि हम स्वर्ग लोक तक पहुंचे। स्वर्ग लोक में भी कष्ट कष्ट है, सुख है, अंत में वहां भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। भक्तों का भाव क्या रहता है? सर्वधर्म पैदा जमा में कम से नमरजा हम तो समय पापे भयो मोक्षामी मां सुचा। भगवान कहते हैं तन मन धन से मेरी शरण में आओ। ठाकुर भक्ति जी कहते हैं मन से देहा गया किशोर मोरा अपने तू यह पदे नंद किशोरा। हे भगवान, मैं अपने मन बुद्धि धन पति पत्नी बच्चे सब आपके चरणों में रखता हूँ। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। तो ये ज्ञान प्राप्त होगा कैसे? प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा। जैसे हर साल हम लोग ग्रंथों का मैराथन करते हैं और हर साल हर रोज आप सुनते हो कल कितनी किताबें, सुबह मंगल आरती के पश्चात सुनते हो ना कितनी किताबें बिकी। क्यों? क्योंकि ये सेवा पर हमारे आचार्यों ने सबसे ज्यादा बल दिया, प्रचार की सेवा पर। क्योंकि भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है सारे बदजीव उनके धाम लौटे। इसलिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, यदा यदा ये धर्म से ज्ञाने भवति भारत पायतनाया साधूनाम धर्म प्राप्त धर्म की स्थापना के लिए। या भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। तो हमारे आचार्यों ने इस सेवा पर बल दिया है और हर साल इसको उनके सारे भक्त मैराथन करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक प्रयास करते हैं इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए। ये साल 2016 में भी आप बॉम्बे के भक्त मैराथन करोगे तो अभी से आप लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं दिसंबर पहले को मैराथन शुरू होगा तो 31 तारीख को हम योजना बनाएंगे। नहीं, वो बौद्धिक समाज में कहते हैं ना एडवांस प्लानिंग। मैं ब्रजर हरि को कह रहा था, हमारे प्रेसिडेंट को, कार्तिक एकदम पश्चात मैराथन शुरू कर देना चाहिए। क्या क्या विचार है आपके? मायापुर मंदिर ने तो मैराथन शुरू भी कर दिया कहीं ने। आप लोग तैयार हो जल्दी मैराथन करने के लिए? अभी से सोचना शुरू कर दो। ये सर हम कहाँ जाएंगे, किसको जोड़ेंगे? कई बार भक्त सोचते हैं हम लोग जितनी जान पहचान है सबके पास पहुंच गए। आप देखते हो कि दिन पे दिन बॉम्बे की संख्या बढ़ते जा रही है कि नहीं? तो अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे किस प्रकार से इस सेवा को सफल बनाने के लिए। तो आज का जो श्लोक था बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें ये अजगर व्यक्ति बता रहा है कि किस प्रकार ये मुझे जन्म मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और अनेक योनियों के विकास के पश्चात। तो ये भी स्थापित कर रहा है कि आज जो हमें ध्येय प्राप्त हुआ है इसके द्वारा हम सदुपयोग करें तो भगवान के धाम लौट सकते हैं या स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं या मनुष्य ध्येय प्राप्त कर सकते हैं या नीचे की योनियों में जन्म प्राप्त कर सकते हैं। ये सब निर्णय रहेगा हमारे कार्यों के द्वारा। तो आप सब जो भक्ति में जुड़े हो हमें बड़े सावधानी के साथ भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए, ध्यान से जाप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड ब्रह्मीते कौन भगवान जी गुरु कृष्ण के पापा है भक्ति लता बीज। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये भक्ति का बीज उगेगा कैसे? कैसे उगता है? श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। तो हम सबके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, चाहे आप घर में रहते हो या मंदिर में रहते हो। श्रवणम कीर्तनम पर ध्यान नहीं देंगे तो माया से बचना मुश्किल होगा। जैसे भगवान कहते हैं देवी ईश गुणमाय मम माया दुरतया। इस माया का विरोध करना बहुत ही कठिन है और जो मेरे शरणागत होगा वो इसका विरोध कर सकेगा। तो आप सबसे निवेदन है ध्यान पूर्वक जाप कीजिए और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ो। खास करके जो पढ़े लिखे भक्त हैं उन्हें नियमित रूप से रोज पढ़ना चाहिए कम से कम गीता को। आप में से कितने भक्त हो जो रोज पढ़ते हो प्रभुपाद के ग्रंथों को? हमारे एक भक्त हैं प्रहलाद नंदा महाराज, वो आए थे ईबीसी मीटिंग में, उन्होंने गीता 150 बार पढ़ी हुई है 150। तो मैंने उनसे पूछा 150 बार कैसे पढ़ लिया हमने? कहते मैं 10 श्लोक रोज पढ़ता हूं। कई होंगे छोटे तात्पर्य होते कई होंगे बड़े। तो आप भी ऐसा नियम बजाइए, ये अच्छा भाव था, रोज 5-10 श्लोक गीता के पढ़ो और श्लोक के साथ तात्पर्य भी पढ़ो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोकों की व्याख्या दी जाती है। तो अगर आप जाप करोगे और गीता रोज पढ़ोगे तो ये देखोगे कि माया का विरोध करना बड़ा सरल हो जाएगा। हम कई बार कहते हैं माया बड़ी बलवान है। माया बलवान है? है बलवान, ये तो मानना पड़ेगा। तो कलयुग में माया का प्रभाव बड़े तेजी से पहुंच जाता है। 1 मिनट में कोई गंदी चीज हो किधर अमेरिका में हो आप एक मिनट में सूचना प्राप्त हो जाएगी। माया बहुत बलवान है, पर माया से ज्यादा बलवान है भगवान का नाम, भगवान का उपदेश। अगर आप भगवान का नाम लोगे बकायदा, गीता पढ़ोगे, साधु संग में रहोगे, केवल कृष्णा प्रसाद खाओगे, आप में भक्ति की माया का विरोध कर सकोगे और प्रचार का उत्साह भी बढ़ेगा। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, भगवान की सेवा हमें उत्साह के साथ करना चाहिए। तो कई बार भक्त कहते हैं हम उत्साहित नहीं है, कारण क्या है? कारण यह है कि हम भगवान की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे। तो भगवान ने हमें सारे हथियार दिए हैं माया का विरोध करने के लिए, इसका उपयोग करोगे। क्षेत्र महाप्रभु ने क्या महत्व दिया, साधु संग नामा कीर्तन, साधु संग में रहो, हरि नाम को जाप करो और गीता को पढ़ो। तो आप सबसे निवेदन है, जैसे कि प्रभुपाद जी श्लोक में के तात्पर्य में कह रहे हैं, ये आंदोलन जो है विश्व के उद्धार के लिए है, और आप लोगों का उद्धार कर पाओगे अगर आप क्या कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो और कृष्ण भक्ति का उपदेश आगे बढ़ाओ, उसी शब्द में प्रचार का उत्साह। तो आप सबसे निवेदन है अभी से प्रचार का उत्साह रखो। प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, है ना? प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, सब प्रकार की सेवाओं में प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, पर प्रचार की सेवा के लिए उत्साह कहां से आएगा? लेक्चर तो सुन लोगे पर उत्साह अगर नहीं हो आप में तो लेक्चर एक कान से अंदर आएगा दूसरे कान से बाहर जाएगा। तो क्या कहा गया है, पवित्रता ही शक्ति है। पवित्रता शक्ति का मतलब है हरि नाम, शास्त्र का अध्ययन इत्यादि का पालन, और फिर उत्साह बढ़ेगा। आप सब भक्तों से निवेदन है इस शिक्षा का लाभ उठाइए और प्रयास कीजिए इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। और मैराथन शुरू होने वाला है, आप सब अभी से सोचना शुरू कर दो कि कैसे प्रचार करोगे, अभी से सोचना शुरू कर दो कैसे लोगों को जोड़ोगे। और मैं कार्तिक खत्म होते ही एकदम सब लोग मैराथन शुरू कर दो, तैयार हो सब? हाय कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन? यस यस, यू नीड अ माइक, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो।
थैंक यू महाराज फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज we are discussing about this python kind of mentality. He is a great soul lying there. So what is the difference between any lazy and irresponsible person and a python?
Good question. And mukha mara basi lazy person, of course in an earlier verse in this chapter Prahlad Maharaj says, you don't even work, you have no money, still you're so fat, isn't it? But a python doesn't do exercise. So therefore, he stays stuck in one place. So he gets fat. Of course, this python was different. This python was self-realized. Prahlad Maharaj assumed, even though his body was covered with mud, dirt, still Prahlad Maharaj could identify that this python could enlighten him, isn't it? So, if Prahlad Maharaj himself was self-realized, he could recognize this python. But normally a lazy person is one who doesn't have much knowledge. That's why he's lazy. And that's why he gets fat. But this python wasn't lazy. I would say, at least he was fully self-realized. Is that right, Gandamala? Yes. Yes.
Maharaj, you were telling that a person is fool and because he is unable to understand his suffering and his karmic activities are causing the...
Lord Vrishadeva said that.
Yeah.
One is a fool. Yeah.
So we can see today that Maharaj, people are very smart and we can see their money making avenues are increasing and many more plans are increasing to make the life happy. So they are not able to see that there is some suffering. They are very promising in their endeavors and their prospects in the future. So how to understand that, why they are not able to understand suffering?
We don't say do not pursue material education. We don't say don't pursue ambitious plans, but link yourself to Krishna and act according for the act. And Krishna says, Yad Karoshi, Yad Vishnashi. Act for the pleasure of Krishna and serve Krishna with the result. But if you don't want to serve Krishna with the result, then you become liable for all the karmic reactions. We don't say science has not made progress. Just like you have these smartphones. How many of you have smartphones? Okay. So, I think the devotees in their smartphones have Prabhupada books, am I right? These are in the West, they don't even write shlokas on the board anymore. Whatever the shloka is, they pull out their smartphone and it's right there. Everyone has a smartphone. So we are against misuse of facilities. Is that your question? I'm sorry, what exactly is your question? They are fools when they misuse their facilities. But we have to enlighten them. Prabhupada used to give the example. A man was flying a kite. He was about to fall off the terrace. Somebody said, careful, you're going to fall off the terrace. He said, let me fly the kite. So people are in ignorance. They're drinking poison. You tell them, take Amrit. He said, no, let me drink poison. What to do? So we go on the marathon. हम लोग marathon में जाते हैं क्यों? लोगों का जहर के बजाय अमृत पिलाने के लिए. लोग आज जहर पी रहे हैं. अज्ञानता में हैं कि मनुष्य जीवन का दुरुपयोग हो रहा है. पर आप उनके हाथों में गीता दोगे, प्रभुपाद जी के पुस्तक दोगे, तो आध्यात्मिक जागृति आरंभ होगी. इन ग्रंथों के वितरण की सेवा इसलिए पर बल दिया जाता है, इसके माध्यम से आध्यात्मिक जागृति आरंभ होती है. ओके, लास्ट क्वेश्चन, आई हैव टू गो.
आज आई एम साक्षी गोपाल.
यस,
आई स्टार्टेड कमिंग टू मंगल आरती. आई स्टार्टेड कमिंग टू मंगल आरती फॉर कार्तिक मंथ. सम ऑफ द डिवोटी जस्ट सेड यू कांट स्टैंड हियर, ऑल दिस थिंग्स. ही स्टार्टेड सेइंग ऑल स्टूपिड थिंग्स टू मी. सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट ही इज सिटिंग देयर राइट नाउ. He's saying you can't stand over here. This all the Mangalati was saying a lot of things to me in front of Sitaram Lakshman Hanuman. I was not saying anything. But afterwards I started saying to him.
Okay, we can talk in a sense.
He's sitting there.
Okay, we can discuss after the class. Class is just okay, quickly. Read as much as you can, but read.
And in
develop the habit of reading.
In maximum lectures, you said that at least one lecture you should, one shloka you should read every day. But due to the heavy schedule of the seva and the job, all
so
the
I understand. Therefore, I'm correcting myself. Read as much as you can. One shloka, two shloka. And then on Saturday, Sunday, you can read more. On working days, read less. But read. Get in the habit of reading. and that's okay.
We are unable to read every day because of that.
At least read one shloka a day. They say an apple a day keeps the doctor away. Do they still say that? Or no? Apple a day doesn't keep the doctor away these days. When I was a kid, they said that, you know, an apple a day keeps the doctor away. So read one shloka. At least read one shloka. Aap sab kam se kam ek shlok tatpurya ke saath roj padhna shuru kar do. Aur aste aste badhate jao. Theek hai? Shuru karoge? Okay. Last question.
Maharaj, when we go for book distribution, or normally every day we offer books to people sitting next to us, then sometimes they take the book and inside Krishna will ask them to take them, to carry with them. So they will take and they will give Lakshmi to us as a donation. But sometimes it happens, they will take the book, they will be looking front and back, reading pages, reading for 4 to 5 pages and returning back. Like, my question is that Krishna inside doesn't want that book to take with them, or how that
Krishna has given us a free choice. Bhagavan ne hum sabko chhoot diya hua hai. We can serve him or not serve him. So those who return the book are not so fortunate. They are fortunate at least they saw the pictures in Prabhupada's books. When you buy the book, you are more fortunate. You get more mercy. The devotee who is distributing gets mercy, and the person who is buying gets mercy. At least it's our duty to try. Vaha kratavya prayas karna. Result is not in our hand. So we should be detached, but we should try. Okay? Samgana diya kya ki? Gaur Premananda.